हेडिंग, कलकत्ता चोर को ले उड़ा। कलकत्ता चोर को ले उड़ा। इस गर्दिश में कलकत्ता केंद्र बन गया था। कलकत्ता हम इस नाटक को हर साल और कभी-कभी एक ही साल में 2-3 बार ले जाते रहे। सबसे पहले कलकत्ता के प्रसिद्ध लेखक और समीक्षक अशोक सेन ने बुलाया। बड़ी शान से उसका एक मैदान में मंचन करवाया जिसमें शंभू मित्रा भी आए। उस वक्त मदन लाल चोर की भूमिका में नहीं थे, उनकी जगह गोविंद निर्मलकर आ गए थे बरसों बाद। जब पेज 17, शंभू मित्रा ने सुना कि इसी पार्ट में दीपक तिवारी आ गए हैं, तो पहले तो उन्होंने कहा गोविंद की बात किसी दूसरे अभिनेता में नहीं आ सकती, और जब आगे चलकर दीपक को देखा तो कहने लगे ये भी बहुत अच्छा है, इसका अंदाजा जुदा गाना है। किसी ने कहा इनवर्टेड कॉमा, शंभू दा आपने मदन लाल को नहीं देखा, वरना शायद आप किसी को भी खातिर में न लाते, इनवर्टेड कॉमा बंद। बाद में अशोक मित्रा ने 4 नाटकों का आयोजन किया जो रविंद्र सदन में प्रस्तुत किए गए। उनमें मिट्टी की गाड़ी, लाला शोहरत राय, गांव के नाव, ससुरार मोर नाव दामाद के साथ चरणदास चोर भी शामिल था। इस दफा सत्यजीत राय तशरीफ लाए और उन्होंने चारों नाटक बड़े शौक से देखे। अशोक मित्रा के बाद सुब्रतो पाल ने भी खुले मैदान में हजारों के मजमे में चरणदास चोर करवाया। बस अब तक सारे शहर में नाटक मशहूर हो चुका था, लोगों का तांता बंधा रहता था। नंदिकार ने अपने सालाना उत्सव के लिए फाइन आर्ट्स एकेडमी थिएटर में एक बार क्या बुलाया कि बरसों बुलाते रहे। वो इस नाटक में ऐसे उलझे कि हर साल एक नया नाटक बुलवाते, अगर उसके साथ हमेशा चरणदास चोर की फरमाइश जरूर करते। ये बात बिल्कुल वही थी जो पारसी थिएटर के ज़माने में अमानत की इंद्र सभा के साथ हुआ करती थी। वो शहर शहर घूमकर अपनी रिपोर्टरी के ड्रामे दिखाती रहती थी। मुहब्बत का फूल, सीता वनवास, बिलवा मंगल, यहूदी की लड़की आदि। और जब ये नाटक किसी किसी जगह चलते दिखाई न देते और कलांच हो जाने का भय आ घेरता, तो अपनी झोली से वही जादुई सामान यानी अमानत की इंद्र सभा निकालकर पेश कर देते। हाल फिर भरना शुरू हो जाता। इसलिए हर पारसी थिएटर कंपनी कोई और ड्रामा रखे न रखे, अमानत की इंद्र सभा जरूर अपनी रिपोर्टरी में शामिल कर लेता था। बिल्कुल यही हाल चरणदास चोर का था। नंदीकार को यकीन था कि नया थिएटर के दूसरे ड्रामों में टिकट बिके न बिके चरणदास चोर में जरूर हाल भर जाएगा, और होता भी यही था। पैराग्राफ चेंज। बॉक्स ऑफिस 10 बजे खुलता था। दर्शक टिकट खरीदने के लिए 4-5 बजे सुबह से काउंटर पर जम जाते थे। एक बार जब नंदीकार के तत्वाधान में रविंद्र सदन में चरणदास चोर आयोजित हुआ, सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी टिकट खरीदने लोगों की भीड़ तड़के से इकट्ठा हो गई और थोड़ी देर में सब टिकट बिक गए। बारिश देर तक उसी जोरों शोर से होती रही। नंदीकार वालों ने देखा कि एक बहुत बड़ा मजमा थिएटर के बरामदे में टिकट से निराश होकर पानी रुकने का इंतजार कर रहा है और उसमें भारी संख्या में विद्यार्थी भी हैं, तो उन्होंने पेज 18 सबको दिलासा देने की खातिर मुफ्त कॉफ़ी बांट दी। चरणदास चोर न सही, मुफ्त कॉफ़ी सही। सुब्रतो पाल ने मुझसे कहा हबीब, तुम्हारे नाटक से आयोजकों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन तुम्हारा थिएटर तो वो पैसा नहीं कमा रहा है जो चाहिए। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक बार अपनी तरफ से कलकत्ता में शो करो और 2-4 नहीं कम से कम 20 शो करो। यूनिवर्सिटी थिएटर में करो, बुकिंग में कर दूंगा, पब्लिसिटी हम करवा देंगे, टिकट भी छपवा देंगे, बॉक्स ऑफिस और थिएटर हॉल में इंतजाम के लिए हम अपने वॉलंटियर तैनात कर देंगे, बस तुम हाँ कहो। हम सोच कर मुनासिब टाइम तय कर देंगे, तुम आओ और बस सिर्फ सो लेकर आओ, ठहरने की व्यवस्था और बाकी सब काम हम पर छोड़ो। मुझे यकीन है तुम नया थिएटर के लिए बहुत पैसा कमाओगे। पैराग्राफ चेंज। हम गए और 20 शो हमने किए। यूनिवर्सिटी थिएटर कलकत्ता के उत्तर में है। कलकत्ता के बहुत से पुराने पेशावर थिएटर 19वीं सदी से वहीं स्थापित रहे। उन्हीं में से एक मशहूर थिएटर स्टार थिएटर है, जहां उस वक्त तक उसी पुराने ढंग के नाटक होते भी रहे थे। ये स्टार थिएटर के जल जाने से पहले की बात है। ऐसी जगह पर दर्शकों की वैसे भी कमी नहीं थी। चुनांच हमारे शो में अक्सर हॉल बिल्कुल भर जाता था, और कभी अगर पूरा हॉल नहीं तो 3/4 लोगों से भरा होता था। जब 20 दिन खत्म होने पर आए तो आखिरी के 4-5 दिन थिएटर छकाचक भर जाता और बहुत से लोगों को वापस जाना पड़ता। यहाँ तक कि आखिरी शो में भी बहुत से दर्शक निराश वापस गए। थिएटर के मामले में कलकत्ता एक अजीब शहर है। मुंबई और दिल्ली की तरह यहाँ थिएटर जाने वालों का कोई विशेष वर्ग नहीं। सभी लोग, लगभग सारा कलकत्ता, शायद सिवा बड़े बड़े महाजनों और व्यापारी तबके के लोगों के, हर व्यक्ति थिएटर जाता है। अगर नाटक अच्छा हुआ तो महीनों बरसों चलता रहता है। पहले बंगला भाषा में ये हाल था और अब हर थिएटर के लिए दर्शक मौजूद हैं, जिसमें प्रोफेसरों, छात्र छात्राओं, पत्रकारों, लेखकों, आर्टिस्टों के अलावा आम आदमी हर वर्ग का शामिल है। क्या रिक्शा चलाने वाले, क्या तरकारी भाजी बेचने वाला, बस ये खबर पहुंच जाए कि थिएटर अच्छा है, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह पहुंच जाने के लिए आमादा रहता है। चाहे शंभू मित्रा का 4 अध्याय हो, चाहे सावली मित्रा का द्रौपदी, चाहे चरणदास चोर, बस अच्छा हो। और अगर अच्छा न हुआ तो ये भी सच है कि फिर कोई नहीं पूछता। पेज 19। एक बार हमारे साथ यही हुआ। हम 4 नाटक लेकर गए थे, जगह वही रविंद्र सदन। उनमें बस एक नाटक में किसी बात की शायद कमी रह गई थी, लेकिन सारे शो दर्शकों से भरे रहे। इस कमजोर शो में भी यही हाल रहा। उम्मीद जो अब बन गई थी कि नाटक सब अच्छे तो होंगे ही, बस फर्क इतना था कि बजाय तालियों के शोर के जो हर रोज हम सुनते रहे, इस एक शो में दर्शक आखिर तक देखते रहे। उसके बाद उठे और उसी तरह खामोशी से चले गए। हम समझ गए कि नाटक पसंद नहीं आया। मैंने कलाकारों से पूछा कि शो आप लोगों को कैसा लगा। सबने एक आवाज़ में कहा, बुरा। मैंने कहा, मुझे भी शो कुछ ठीक नहीं लगा। हम लोग बहुत देर तक सर जोड़कर सोचते रहे कि प्रोडक्शन में आखिर क्या खराबी थी। बात समझ में नहीं आई। बजाहिर सब पार्ट ठीक ही कर रहे थे, कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ कम, लेकिन ये तो हर नाटक में होता है। सोचा कि शायद सेट बहुत भारी हो गया था। बहुत सी और कमजोरियां तलाश करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। बस एक बात पर सब सहमत थे कि कुछ न कुछ कमी ऐसी थी जिससे शो बिगड़ सा गया था। इस नाटक को दोबारा कलकत्ता ने फिर वहीं बुलाया, और अगर बुलाता भी तो शायद देखने कोई नहीं आता। वह नाटक था साजापुर की शांति बाई, ब्रेस्ट के गुड वोमन ऑफ सेट्स जुआन का मेरा रूपांतरण। इस नाटक के बहुत कामयाब शो कुछ अरसे पहले हम दिल्ली में कर चुके थे। कुछ बरस बाद जब मैं पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर में विजिटिंग प्रोफेसर था, तो रायपुर के कुछ एक्टरों को, नया थिएटर के कलाकारों को साथ मिलाकर यह नाटक बड़ी मेहनत से दोबारा तैयार किया गया। एक नया सेट भी बनवाया गया और उसे कलकत्ता लेकर आया था। फिदा बाई, जो शांति का रोल पहले से करती चली आई थी, इस बार भी नाटक की नायिका वही थी, और उन्होंने अभिनय भी बजाहिर उसी तरह दिल लगाकर और बहुत अच्छी तरह किया। इसके बावजूद नाटक कलकत्ता में फेल हो गया। फिदा बाई खुद अपने रोल से असंतुष्ट थी, कह रही थी, कौन जाने का हो गे रहस, मजा नहीं आईस। अशोक सेन ने कहा, असल में ये नाटक नंदिकार कर चुका है और इसमें नायिका का पार्ट रुद्र प्रताप सेन गुप्ता की पहली पत्नी, जिनका इंतकाल हो गया था, वो कर चुकी है। फिदा बाई को विश्व स्तर की एक महान अभिनेत्री मानता हूँ, जिनकी भूमिकाएं उन्होंने नया थिएटर के नाटकों में निभाई है। उनमें खास तौर से मुझे दो बेहद पसंद है। पेज 20। मेरी राय में बहादुर क्लारिन और साजापुर के शांति बाई में उनकी कला चोटी पर पहुंच गई थी। ये और बात है कि कलकत्ता वालों के लिए फिदा बाई का छत्तीसगढ़ी संवाद, जो दीगर हर नाटक में उन्हें पसंद आया था, वो उस नाटक के बंगला संवाद की तुलना में इतना न जचा हो। बहरहाल, मैं इतना मानता हूँ कि इस प्रस्तुति में वो फिजा कामयाब न हो सकी जो उससे पहले किसी नाटक की पहली प्रस्तुति में कायम हो चुकी थी। चुनांच कोई बात थी जिसकी परवाह से उस नाटक का स्वागत कलकत्ता के दर्शकों ने नहीं किया। अब फिजा में क्या कमी थी और क्यों थी, वो बात आज तक समझ में नहीं आई। शायद मेहनत जरूरत से ज़्यादा कर ली हो। मेहनत वैसे हर नाटक की तैयारी के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि महज मेहनत से कला उत्पन्न नहीं होती, इसके लिए कुछ खूने जिगर की भी ज़रूरत होती है। शायद खून जलाने में इस बार कुछ कमी रह गई हो। बस जो बात एक बार फिर समझ में आई वो यह थी कि एक छत्तीसगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा कलकत्ता, उन दोनों जगहों के थिएटर देखने वाले विश्व स्तर के अच्छे दर्शकों में आसानी से गिने जा सकते हैं। इसका मुझे हमेशा यकीन रहा। इस घटना के बाद यह यकीन कुछ और गहरा हो गया।